रविवार 18 सितंबर का नमस्कार भारत, फैसल मोहम्मद अली से। बस्तर में पुलिस संरक्षण में फिर खड़ा किया गया सलवा जुडूम जैसा कथित नक्सल विरोधी आंदोलन।
ये बहुत दिनों से हम लोग का प्रयास चल रहा है, गांव-गांव में हमारे संगठन बने हुए हैं और गांव-गांव में सुरक्षा के लिए समूह बने हुए हैं। 2017 के अंत तक हम इस समस्या से निजात पा लेंगे।
सलवा जुडूम को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से किया गया था बंद, सुनवाएंगे एक रिपोर्ट। सीरिया में जारी युद्ध विराम टूट की कगार पर, अमरीकी सैनिकों के हवाई हमले में 60 से अधिक सीरियाई सैनिकों की मौत और सामाजिक रूप से पिछड़ा बिहार महिलाओं को संपत्ति पर मालिकाना हक देने में भारत में सबसे आगे, महिलाओं पर दिख रहा है इसका असर।
जो थाना में नहीं जाते थे तब हम लोग थाना प्रभारी से बात करते हैं, मुखिया से बात करते हैं, डीएम से बात करते हैं।
पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अमर शर्मा से। बस्तर में कथित रूप से माओवादियों के खिलाफ सलवा जुडूम नामक एक अभियान को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बंद कर दिया गया था। पुलिस और राज्य की भाजपा सरकार के संरक्षण में साल 2005 में शुरू किए गए इस अभियान में माओवादियों से लड़ने के नाम पर आम आदिवासियों को हथियार देकर जंगलों में उतार दिया गया था। सलवा जुडूम से जुड़े हुए नेताओं ने अब एक बार फिर अग्नि नामक संगठन बनाकर फिर से माओवादियों के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया है। पुलिस और इस संगठन अग्नि के नेताओं ने कल जगदलपुर में एक रैली भी आयोजित की। अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने माना है कि उनके जहाज़ों ने उत्तर पूर्वी सीरिया के डेरेल्जो में हमले किए हैं। रूस की सेना का कहना है कि इस हमले में 62 सीरियाई सैनिकों की मौत हो गई है जो तथाकथित इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे थे। अमेरिका का कहना है कि जैसे ही वहां सीरियाई सैनिकों की मौजूदगी का उन्हें पता चला, उन्होंने हमला रोक दिया। वहीं रूस का कहना है कि इस हमले के कारण आईएस के जिहादियों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। रूस ने इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है जो जारी है। यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रांस अटलांटिक व्यापार समझौते के खिलाफ जर्मनी के कई शहरों में हजारों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वैश्वीकरण का विरोध करने वाले समूहों के मुताबिक इस समझौते के बाद भोजन और पर्यावरण संरक्षण पर यूरोपीय मानकों का स्तर कम हो जाएगा, इसलिए वे इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें इस बात का भी डर है कि इस सौदे के बाद आउटसोर्सिंग को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा जिससे नौकरियाँ कम हो जाएंगी। प्रस्तावित समझौते के समर्थकों का कहना है कि इससे व्यापार पर लगने वाला सीमा शुल्क कम हो जाएगा और विकास को बढ़ावा मिलेगा। विरोध प्रदर्शन राजधानी बर्लिन समेत 7 शहरों में जारी है। बर्लिन में प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वे इस व्यापार समझौते का विरोध क्यों कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमें इस समझौते से छुटकारा मिले और यूरोपीय सामाजिक और पर्यावरण मानकों का सम्मान किया जाए, इसे बरकरार रखा जाए और इसमें सुधार हो। उद्यमों और बैंकों को दुनिया भर में लोगों से अधिक शक्तियाँ मिल जाएंगी। ये थे प्रदर्शनकारी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। स्लोवाकिया ने कहा है कि अगर ब्रिटेन अपने यहाँ काम कर रहे यूरोपीय संघ के नागरिकों के अधिकारों की गारंटी नहीं देता है तो स्लोवाकिया यूरोपीय संघ छोड़ने पर ब्रिटेन को दिए जाने वाले किसी भी सौदे पर वीटो करेगा। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्टन फिको ने कहा कि हंगरी, पोलैंड और चेक गणराज्य भी इस मुद्दे पर उसके साथ खड़े हैं। बेल्जियम में पहली बार एक बच्चे को इच्छा मृत्यु की इजाज़त दी गई है। नया कानून बनने के बाद विशेष परिस्थितियों में किसी को अपनी मृत्यु चुनने का अधिकार मिल गया है। इसी के तहत एक गंभीर रूप से बीमार बच्चे को मृत्यु चुनने में मदद की गई। बेल्जियम दुनिया में इकलौता देश है जो किसी भी उम्र के बच्चे को मरने के उम्र चुनने की आज़ादी देता है। साल 2014 में इससे जुड़ा कानून पारित हुआ था। बीबीसी समाचार।
इतवार की सुबह बीबीसी के तमाम सुनने वालों का फैसल मोहम्मद अली और पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम में सबसे ऊपर छत्तीसगढ़ से खबर। छत्तीसगढ़ के बस्तर में कल एक ललकार रैली आयोजित थी जिसे किसी अग्नि नाम के संगठन ने आयोजित किया था। खुद को नक्सल विरोधी आंदोलन का हिस्सा बताने वाले अग्नि को बस्तर पुलिस का संरक्षण भी हासिल है। साल 2005 में शुरू किए गए इसी तरह के कथित नक्सल विरोधी आंदोलन सलवा जुडूम को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियों के बाद बंद करना पड़ा था। सलवा जुडूम पर लोगों की हत्या, गांव में आग लगाने और दूसरे तरह के गंभीर आरोप लगे थे। सुनिए रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
2005 में शुरू हुए सलवा जुडूम नामक सरकारी अभियान में बस्तर के 644 गांवों को पूरी तरह से जला दिया गया था। पुलिस संरक्षण में चलने वाले सलवा जुडूम के लोगों पर सैकड़ों आदिवासियों की हत्या और महिलाओं के साथ दुष्कर्म के आरोप लगे। 1 लाख से अधिक आदिवासियों को अपने घरों से विस्थापित कर दिया गया। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो राज्य सरकार द्वारा आम लोगों को हथियार देकर कथित रूप से माओवादियों के खिलाफ शुरू किए गए इस आंदोलन की कड़ी आलोचना हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्ती के साथ इस अभियान को बंद करने के निर्देश दिए, लेकिन बस्तर में पुलिस समय समय पर दूसरे नामों से सलवा जुड़ुम को शुरू करने की सफल असफल कोशिश करती रहती है और ताज़ा नाम अग्नि का है। इस कथित सामाजिक संगठन ने माओवादियों के विरोध के नाम पर शनिवार को बस्तर के जिला मुख्यालय जगदलपुर में ललकार रैली का आयोजन किया। अग्नि संगठन के संयोजक आनंद मोहन मिश्रा का दावा है कि उनका संगठन अहिंसक तरीके से पूरे बस्तर में अपनी लड़ाई शुरू करने वाला है।
हमने रैली की है तो केवल आज एक दिन के लिए भीड़ इकट्ठी नहीं हुई है, ये बहुत दिनों से हम लोग का प्रयास चल रहा है। गांव-गांव में हमारे संगठन बने हुए हैं और गांव-गांव में सुरक्षा के लिए समूह बने हुए हैं। 2017 के अंत तक हम इस समस्या से निजात पा लेंगे।
इस ललकार रैली के आयोजन के सूत्रधार बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक शिवराम प्रसाद कल्लूरी बेहद खुश नजर आए। सलवा जुड़ुम के नेताओं के साथ मंच पर उपस्थित शिवराम प्रसाद कल्लूरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सुरक्षा बलों के अलावा कई स्तरों पर माओवादियों से लड़ाई चल रही है।
ये लोग अहिंसात्मक ढंग से माओवादियों के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। माओवादियों से हम लोग जंगलों में युद्ध हमारा जारी है, उसको हम बहुत तरीके से लड़ रहे हैं। रैली की सफलता आपको अंदाज लगाना मुश्किल है।
लेकिन मानवाधिकार संगठन PUCL की छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर लाखन सिंह का कहना है कि यह आयोजन माओवादियों के खिलाफ नहीं उन लोगों के खिलाफ था जो बस्तर में पुलिस ज्यादतियों के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं।
मामला यह है कि ये रैली थी किसके खिलाफ, ये ललकार रैली कही गई, वो किसको ललकार रहे थे कि माओवादियों को रैली से ललकारा नहीं जा सकता। आज की रैली का मुख्य स्वर उन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ था, उन वकीलों के खिलाफ था जो उनके पुलिस की प्रताड़ना के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो आदिवासियों के केस लड़ रहे हैं, और इन सारे लोगों के साथ काम करने वाले पत्रकार हैं, इन्हीं के खिलाफ एक स्वर में सबने आलोचना की।
बस्तर में अग्नि का यह शुरुआती आयोजन कई संकेत दे रहा है, लेकिन जो बात दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ साफ पढ़ी जा सकती है वो ये कि अग्नि जैसे कथित अहिंसात्मक आंदोलन बस्तर में आदिवासियों के लिए एक बार फिर बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं, जहां आदिवासियों को अग्नि या माओवादियों में से किसी एक को चुनने के लिए बाध्य किया जाएगा। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
सलवा जुड़ुम के तर्ज पर एक दूसरा कथित आंदोलन बस्तर में फिर से शुरू किया गया। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री समेत 42 विधायकों के क्षेत्रीय दल पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश या PPA में जाने की घटना को सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से पेश कर रहे हैं। PPA नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है, जिसका गठन भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वोत्तर राज्यों को कांग्रेस मुक्त करने के लिए किया है। गुवाहाटी से दिलीप शर्मा।
अरुणाचल प्रदेश में जो हुआ उसे जानकार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच उत्तर पूर्व में जमीन बनाए रखने और हासिल करने का संघर्ष मान रहे हैं। कुछ ही माह पहले नवाम तुकी सरकार में मंत्री रहे कालिको पुल ने 22 विधायकों के साथ बगावत कर दी और BJP के समर्थन से PPA की सरकार बना ली। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से 5 महीने बाद कांग्रेस को दोबारा सत्ता तो मिली, लेकिन वह फिर से अपने बागी विधायकों को एकजुट रखने में सफल नहीं हो सकी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य के नेताओं को कांग्रेस हाईकमान या फिर शीर्ष केंद्रीय नेता कोई अहमियत नहीं देते। कांग्रेस लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू कहते हैं,
अरुणाचल के लिए अच्छा दिन, कांग्रेस के लिए बुरा दिन, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कांग्रेस का हालत देखिए, देश में एक के बाद एक सभी प्रमुख कांग्रेस नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के बाहर जा रहे हैं। कारण क्या है? उनका नेतृत्व में उनको विश्वास नहीं है।
वहीं कांग्रेस इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को केंद्र की BJP सरकार के जरिए ब्लैकमेलिंग का नतीजा बता रही है। असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद रिपुन बोरा ने BBC से कहा,
अभी ये जो MLA गया है, जो लीडर गया है वो गया है, लेकिन पब्लिक तो नहीं गया है ना, ये आम जनता तो नहीं गया है ना उनके साथ। ये हमको नहीं लगता है विश्वास, क्योंकि नवम तक अगर जाना था वो बहुत पहले जा सकता था। खंडू से पहले उनको उसी टाइम ऑफर दिया था चीफ मिनिस्टर का।
कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री बनाने के बावजूद 2 महीने के भीतर कुल 43 विधायक के साथ पीपीए में शामिल हुए पेमा खांडू भले ही पीपीए में शामिल होने के निर्णय को राज्य के सर्वश्रेष्ठ हित में लिया गया निर्णय बता रहे हैं, परंतु नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक हेमंत विश्व शर्मा का कहना है,
पीपीए इज ए पार्ट ऑफ नेडा एंड नेडा इटसेल्फ इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एनडीए।
पीपीए नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस अर्थात नेडा का हिस्सा है और नेडा एनडीए के साथ काम करता है। जब कोई भी हमारा पुराना साथी वापस मूल पार्टी में लौट आता है और जब उसकी सरकार है तो ये नैतिक तौर पर बीजेपी के लिए अनिवार्य हो जाता है कि वो बाहर से उसका समर्थन करे। कालिको पुल ने भी जब इस तरह सरकार बनाई थी उस समय भी हमारी पार्टी ने बाहर से उनकी सरकार का समर्थन किया था और खांडू सरकार के लिए भी यही स्टैंड जारी रहेगा जब तक पार्टी आगे कोई निर्णय नहीं ले लेती। इस समय पेमा खांडू नेडा में शामिल हो गए हैं। ये थे हेमंत विश्व शर्मा के शब्द। पिछले 10 महीनों से अरुणाचल प्रदेश में जो सियासी खेल जारी है वो कांग्रेस के पीपीए में विलय हो जाने से थम जाएगा ये कहना जरा जल्दबाजी होगी। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी गुवाहाटी।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब रुख करते हैं सीरिया का। सीरिया में शांति की बहाली के लिए चंद दिनों पहले शुरू हुआ युद्ध विराम समाप्ति की कगार पर है। अमरीकी लड़ाकू विमानों ने सीरिया की फौज पर बमबारी की जिसमें 60 से अधिक सैनिकों की मौत हो गई है। हालांकि अमरीका ने कहा है कि उसके विमानों ने हमला गलती से कर दिया। अमरीका ने इस हमले के लिए माफ़ी भी मांगी है। अमरीका ने इस हमले के लिए खेद जताया है। रूस का कहना है कि इस तरह के हमलों से चरमपंथी समूहों को मदद मिल रही है। इस मामले पर संयुक्त राष्ट्र रक्षा परिषद एक आपातकालीन बैठक कर रही है। अमर शर्मा से सुनिए पूरा ब्यौरा।
अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने स्वीकार किया है कि उनके जहाजों ने उत्तर पूर्वी सीरिया में हमले किए हैं। रूस की सेना का कहना है कि इस हमले में 62 सीरियाई सैनिकों की मौत हो गई है जो तथाकथित इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे थे। रूसी रक्षा मंत्री ने सीरियाई सेना जनरल कमांड के बयान का हवाला देकर बताया कि सीरियाई सेना पर गठबंधन सेनाओं के 4 हवाई हमलों के कारण आईएस आगे बढ़ गया है। इससे पहले रूस ने कहा था कि सीरिया में जारी युद्ध विराम कमजोर हुआ है और उसके टूटने का खतरा मंडरा रहा है और इसके लिए अमेरिका जिम्मेवार होगा। युद्ध विराम के समझौते के मुताबिक अमेरिका आईएस या अन्य जिहादी समूहों पर हमले जारी रख सकता है। अमेरिका ने एक बयान में कहा कि गठबंधन सेनाओं को लगा कि वे कथित इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं और रूस के इस बयान के बाद कि जिन अधिकारियों और वाहनों को निशाना बनाया गया है वे सीरियाई सेना का हिस्सा हो सकते हैं। गठबंधन सेना ने हमले को फौरन रोक दिया। अमेरिका की ओर से बयान में कहा गया कि संयुक्त हवाई संचालन केंद्र ने रूसी पक्ष को इस हमले के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था। बयान में यह भी कहा गया कि सीरिया में बहुत जटिल हालात हैं जहां कई सेनाएं और लड़ाके बेहद आसपास मौजूद हैं, लेकिन गठबंधन सेनाएं किसी सीरियाई सैन्य टुकड़ी को जानबूझकर निशाना नहीं बनाएगी जिसकी मौजूदगी के बारे में उसे पहले से पता हो। गठबंधन इस हमले और इससे जुड़ी हुई परिस्थितियों की समीक्षा करेगा कि क्या इससे कोई सबक सीखा जा सकता है। इससे पहले रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर बाद में पता चलता है कि अमरीकी हवाई हमले किसी गलती का नतीजा नहीं थे तो इसकी वजह मॉस्को के साथ किसी सैन्य कार्रवाई में तालमेल बैठाने से इनकार करने वाला वाशिंगटन का अड़ियल रवैया है। रूस ने कहा है कि वो अमरीकी हवाई हमलों के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुला रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों से सीरिया को लेकर अमरीका और रूस के बीच हुआ समझौता खतरे में पड़ गया है। उधर सीरिया की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हवाई हमला निर्णायक सबूत हैं कि अमेरिका और उनके सहयोगी जिहादी समूहों का समर्थन करते हैं। ब्रिटेन में स्थित सीरिया के हालातों पर नजर रखने वाले समूह के मुताबिक हमले में कम से कम 80 लोगों की मौत हुई है। रूस और अमेरिका के बीच कई महीनों की बातचीत के बाद जिनेवा में 9 सितंबर को संघर्ष विराम के समझौते का ऐलान किया गया था। इसे सोमवार को लागू किया गया। समझौते के मुताबिक अगर युद्ध विराम 7 दिनों तक जारी रह जाता है तो अमेरिका और रूस संयुक्त रूप से जिहादी चरमपंथी समूह जबात फतह अल शाम पर हवाई हमले करेंगे। यह चरमपंथी समूह पहले अल नुसरा फ्रंट के नाम से जाना जाता था जो आईएस से अलग होकर बना था।
सीरिया में जारी लड़ाई से अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग बेघरबार हो गए हैं। रिपोर्ट सुना रहे थे अमर शर्मा। और अब सुनते हैं उर्दू अखबारों की समीक्षा।
भारत और पाकिस्तान का तनाव और दक्षिण एशिया में बनते नए समीकरण पाकिस्तानी उर्दू मीडिया में चर्चा का विषय हैं। रोजनामा इंसाफ लिखता है कि भारत कभी सोवियत यूनियन की गोद में बैठा था, लेकिन जब सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो सिमट कर रूस बन गया तो भारत अमरीका की सरपरस्ती में चला गया। अखबार कहता है कि अमेरिका दुनिया में अपने दबदबे का भले ही कितना दम भरे, लेकिन सात समंदर पार से आकर दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व में उसके हस्तक्षेप को कभी पसंद नहीं किया जा सकता। अखबार ने चीन से पाकिस्तान की दोस्ती को मिसाली बताया है और भारत के पुराने दोस्त रूस के साथ पाकिस्तान के बेहतर होते संबंधों को क्षेत्र में नए समीकरणों का संकेत बताया है। वहीं अफगान राष्ट्रपति के हालिया भारत दौरे पर एक्सप्रेस लिखता है कि अफगान सरकार भारत से रिश्ते मजबूत कर रही है, लेकिन ये रिश्ते पाकिस्तान से दुश्मनी की बुनियाद पर नहीं होने चाहिए। अखबार की राय में यूं लगता है कि भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ एक हो गए हैं और उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे में अमेरिका अगर दहशतगर्दी का खात्मा चाहता है तो उसे अफगानिस्तान पर नजर रखनी चाहिए। वहीं जंग ने संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद में भारत की तरफ से बलूचिस्तान का मुद्दा उठाए जाने को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप बताया है। अखबार कहता है कि हकीकत तो यह है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ बलूचिस्तान में दखलंदाजी कर रही है और भारत के एक हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण जाधव का यहां से पकड़ा जाना इसका जीता जागता सबूत है। वहीं पाकिस्तान की तरफ से यूएन की मानवाधिकार परिषद में भारत प्रशासित कश्मीर के हालात को उठाए जाने पर अखबार ने लिखा है कि ये तो स्वाभाविक ही है। वहीं नवाए वक्त ने भारत प्रशासित कश्मीर की हालिया अशांति के दौरान होने वाली मौतों को कत्ले आम बताया है और संयुक्त राष्ट्र से इनकी जांच कराने की मांग की है। रुख भारत का करें तो सहाफत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के इस फैसले को अहम बताया है कि चुनावी वादे पूरे न करने वाली पार्टियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अखबार के मुताबिक अदालत ने चुनाव आयोग को हिदायत दी है कि वो इन पार्टियों के खिलाफ संविधान की धारा 324 के तहत कार्रवाई करे। अखबार ने भाजपा के हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए आने के वादे का जिक्र करते हुए लिखा है कि सत्ता मिलने पर चुनावी वादे भूल जाना किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि सभी की फितरत है। वहीं रोजनामा खबरें ने समाजवादी पार्टी में मचे घमासान पर संपादकीय लिखा है किसकी जीत किसकी हार। अखबार लिखता है कि ताकत की लड़ाई पहली बार सड़कों पर आई और चाचा भतीजे ने खूब हाथ आजमाए। फिलहाल आग दबा दी गई है लेकिन बुझी नहीं है और चिंगारी कभी भी भड़क सकती है। अखबार की राय में मुलायम को फैसला करना ही होगा कि पार्टी में उनका असली उत्तराधिकारी कौन है।
भारत और पाकिस्तानों की उर्दू अखबारों माफ कीजिएगा भारत और पाकिस्तान की उर्दू अखबारों की समीक्षा कर रहे थे अशोक कुमार।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और बिहार जहां आजकल सिर्फ शहाबुद्दीन मोहम्मद शहाबुद्दीन की वजह से खबरों में बना हुआ है, वहीं एक खबर और है कि जमीन और मकान पर मालिकाना हक के मामले में बिहार की महिलाएं देश भर में सबसे आगे हैं। सामाजिक रूप से पिछड़े राज्य बिहार का यह तथ्य राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार की 69% महिलाओं के पास ये मालिकाना हक है, यानी कि जमीन और मकान पर। क्या हो सकती है इसकी वजह, यही जानने की कोशिश की पटना में सीटू तिवारी ने।
रामकली देवी से जब मैंने बात की तो उनकी आवाज में बसी उम्मीद को महसूस किया। चार लड़कियों की मां रामकली को ये उम्मीद जमीन के मालिकाना हक ने दी है। पटना के पास विक्रम के राघोपुर गांव में उन्हें 3 डेसिमल जमीन का पर्चा मिला है। वो बताती हैं,
जो थाना में नहीं जाते थे तब हम लोग थाना प्रभारी से बात करते हैं, फिर मुखिया से बात करते हैं, डीएम से बात कर लेते हैं, मुख्यमंत्री से बात कर लेते हैं। पहले से तो ढेर बदलाव है।
रामकली जिस कश्ती पर सवार है उसमें उनके साथ बिहार की 69% महिलाएं हैं। राष्ट्रीय फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS-4 की रिपोर्ट के मुताबिक जमीन और मकान के मालिकाना हक के मामले में बिहार की महिलाएं देश में सबसे आगे हैं। 2015-16 का ये सर्वे 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं के बीच किया गया है। सर्वे के मुताबिक बिहार पहले नंबर पर तो दूसरे नंबर पर मेघालय और त्रिपुरा है। एन सिन्हा संस्थान के पूर्व निदेशक और समाज शास्त्री DM दिवाकर बताते हैं,
सरकार ने जो कुछ पॉलिसीज बनाए हैं जिसमें महिलाओं के नाम से जमीन ज्वाइंट पट्टा जब देते हैं तो महिलाओं के नाम से पहला नाम देने की बात कही है। महादलित मिशन में जो जमीन दी है वासभूमि के लिए वो भी महिलाओं के नाम से मिली है।
बिहार सरकार ने 2,32,000 महादलित महिलाओं को जहां जमीन दी, वहीं 23,00,000 पर्चेदारियों के जमीन का ज्वाइंट पट्टा देने की मुहिम भी सरकार ने चलाई। हालांकि ये दिलचस्प है कि 23,00,000 में से 17,00,000 पर्चाधारी ही सामने आए। डीएम दिवाकर कहते हैं कि जमीन मिलती है तो महिलाओं का जीवन बदल जाता है।
अच्छी किताब जीके लिटन की है अनइक्वल पार्टनर्स, जिसमें वो दिखाते हैं कि महिलाओं को नेचुरल कॉल व बाकी तरह की चीजों के लिए भी अपने बहुत सारे समझौते करने होते हैं। तो यदि उनके नाम से जमीन होती है तो वह दैनिक जीवन का एक प्रतिष्ठित जीवन जीने की स्थिति में वो पहुंचता है।
जहां सरकार की नीतियों के जरिए महिलाओं को मालिकाना हक मिला है, वहीं आंदोलन के जरिए भी ये रास्ता निकला। 70 और 80 के दशक में संघर्ष वाहिनी के बोधगया भूमि मुक्ति आंदोलन में महिलाओं को जमीन मिली। भूदान यज्ञ कमेटी ने भी महिलाओं को जमीन बांटी। सोना देवी को बोधगया आंदोलन से 9 कट्ठा जमीन मिली। उनके बेटे राम प्रसाद बताते हैं कि जमीन के मालिकाना हक ने उनका समाज में रुतबा बढ़ाया।
जमीन मिलने के बाद में माँ का जो है प्रतिष्ठा बढ़ा हुआ है। जहाँ मीटिंग होता है वहाँ पर बुलाते हैं।
जानकार बताते हैं कि आंदोलन के वक्त पुरुषों ने खुद आगे बढ़कर सरकार के सामने मांग रखी थी कि जमीन का हक घर की महिलाओं को दिया जाए, जबकि सरकार इस बात के लिए तैयार नहीं थी। उस चेतना का असर आज भी देखने को मिलता है। अभी भी वनाधिकार कानून के तहत गया और आसपास के इलाकों से जो दावे आ रहे हैं, उसमें महिलाएं ही घर के मुखिया के तौर पर जमीन का क्लेम कर रही हैं। आंदोलन के नेता प्रियदर्शी बताते हैं,
लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मूवमेंट चले, तो शुरू के दिनों में नक्सल मूवमेंट, भूदान मूवमेंट, इसमें से धीरे धीरे लैंड स्ट्रगल और क्लास स्ट्रगल में जेंडर इशू भी आने लगा। इस बात की चर्चा नैरोबी में विश्व महिला सम्मेलन हुआ था कि महिलाएं ही फैमिली का हेड होंगी और उनके नाम पर रीडिस्ट्रीब्यूटेड लैंड का पर्चा बनेगा। बात नैरोबी कॉन्फ्रेंस में भी चर्चा में लोगों ने लाया था।
हालांकि जमीन का ये मालिकाना हक कुछ अपवादों को छोड़कर महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव नहीं ला सका। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास की इंदु भारतीय ने दलित वुमेन एंड लैंड मैपिंग सोशल चेंज इन बोधगया नाम से एक शोध मई 2016 में किया है। इसके मुताबिक जमीन मिलने से महिलाओं का दोयम दर्जा खत्म नहीं हुआ। महिलाएं आज भी घरेलू हिंसा का वैसी ही शिकार होती हैं जैसा पहले होती थी। सीटू तिवारी, BBC, पटना।
ये कहानी है मोहब्बत की, एक काले राजकुमार, अफ्रीकी राजकुमार और एक ब्रितानी लड़की की प्रेम की कहानी। लेकिन ये आज की कहानी नहीं है, ये कहानी है सन 1948 की, जिस समय इस तरह के संबंध बिल्कुल समाज को किसी भी तरह से जो है एक्सेप्टेड नहीं होते थे। समाज इनको मानने को कभी तैयार नहीं होता था। बोस्तवाना के राजकुमार रेसिका कांबा थे और ब्रितानी लड़की रूथ थी। जबकि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रेसिका कांबा पढ़ रहे थे तो उनकी मुलाकात रूथ से हुई और उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ पैदा हो गई। तब वो बेतुयाना लैंड कहलाता था और ब्रितानी संरक्षण में होता था। तब उन्हें रेसिका कांबा को वहाँ से वापस जाना था पढ़ाई पूरा करके, और वहाँ ज़ाहिर कबीले की किसी लड़की से शादी करना था और उसके बाद जो है वहाँ की सरदारी या राजकुमार जो थे वहाँ की बादशाहत उनको अपनानी थी। लेकिन उनके परिवार ने इसे मानने से इनकार कर दिया। साथ साथ ब्रिटेन में भी उन दोनों को बहुत दिक्कतें बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन उन दोनों ने हार नहीं मानी और आखिरकार दोनों एक साथ हो गए। इस कहानी को पढ़ने के लिए आइए bbchindi.com पर, और इसके साथ साथ आप दूसरी कहानियाँ भी पढ़ सकते हैं bbchindi.com पर, कि दो मर्द मिलकर कैसे बच्चा पैदा कर सकते हैं, और बेल्जियम में बच्चे ने चुनी इच्छा मृत्यु। और अब सुनते हैं इस सप्ताह के न्यूज़मेकर्स।
नमस्कार, बीबीसी न्यूज़मेकर्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़मेकर्स पर इस हफ्ते की शख्सियत कुछ खास हैं। रियो में चल रहे पैरालंपिक्स में इस भारतीय ने गोला फेंक F53 इवेंट में दूसरा स्थान हासिल कर इतिहास रचा है। बात हो रही है दीपा मलिक की, जो पैरालंपिक में रजत पदक जीतने के साथ ही भारत को पदक दिलाने वाली देश की पहली महिला भी बन गई हैं। दीपा, बहुत बहुत स्वागत है आपका और साथ ही बधाई इस कामयाबी पर। सबसे पहले तो ये बताइए, इस मेडल के क्या मायने हैं आपके लिए?
कोई भी खिलाड़ी जब एक खेल के सफर में या अपनी जिंदगी को खेल में डेडिकेट करता है तो उसकी हार्दिक इच्छा यही रहती है कि ओलंपिक खेले। और मैं तो 10 साल से खेल रही हूँ और 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप का हिस्सा बन चुकी हूँ और एशियन गेम्स भी खेल चुकी हूँ, कॉमनवेल्थ भी खेल चुकी हूँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भी मेडल है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक ये बहुत ज़्यादा चाह थी कि ओलंपियन या पैरालंपियन शब्द मेरे नाम के साथ जुड़े बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे कोचेज के लिए और देश के लिए। मैं ये मेडल जीत पाई, मुझे बहुत खुशी है।
दीपा, कहते हैं एक मेडल के पीछे खिलाड़ी की अपनी मेहनत तो होती ही है, साथ ही उसके साथ कई और लोग भी जुड़े होते हैं। आपके मेडल की क्या कहानी है?
ये मेडल की खास बात यह है कि कोच मेरे खुद के हस्बैंड थे, मेरी साइकोलॉजिकल ट्रेनर मेरी खुद की बेटी थी और परिवार मिलकर आपस में हमने इस जर्नी को आगे ले गए। मेरे सारे कोचेस, मेरे सारे ट्रेनर्स, मेरी पैरालंपिक कमिटी ऑफ इंडिया, मेरे मेंटर सत्यनारायण सर, तो आई थिंक बहुत लोगों की मेहनत जुड़ी मेरे साथ और आज मेडल में तब्दील हो गई।
दीपा, क्या सोच लेकर आप रियो आई थी? मेडल पर पूरा फोकस था या था कि मैं अपना बेस्ट करूंगी और फिर जो होगा वो देखा जाएगा, किसी तरह का प्रेशर था?
प्रेशर बिल्कुल भी नहीं था, बहुत संयम से खेली, बहुत खुश होकर खेली और अपने लाइफ बेस्ट के साथ खेली। पहला कंपटीशन था जिसमें मैं ब्रेक के साथ खेली हूँ, नहीं तो अमूमन हम लोगों को 6 के 6 थ्रो इकट्ठे दिए जाते हैं, तो जो मेरी तैयारी थी वो लगातार 6 थ्रो की थी। एक टेम्पो बनता है, एक रिदम होता है जिसमें हम धीरे धीरे अपना थ्रो बढ़ाते हैं। पहले 3 थ्रो दिए गए, फिर हमारी चेयर हटाई गई, हमें उतारा गया और एक लंबा ब्रेक आया और उसके बाद दोबारा 3 थ्रो मिले, तो शायद कहीं वो रिदम टूटा, अगर वो नहीं टूटता तो शायद गोल्ड भी आता।
दीपा, चुनौतियां तो हर इंसान के जीवन में आती हैं, आपकी इस चुनौती का सामना आपने कैसे किया? व्हीलचेयर से मेडल तक का सफर जाहिर है मुश्किल भरा रहा।
एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार अपंगता ने आके मेरे दरवाजे पे दस्तक दी है। मुझे डॉक्टरों ने कह दिया कि आपके ट्यूमर आ चुका है और हम जब ट्यूमर निकालेंगे तो आपका छाती का निचला हिस्सा पूरा चला जाएगा। हुआ भी वही, वो भी ऐसे वक्त में जब हस्बैंड कारगिल की लड़ाई में थे और लगभग 3-4 महीने बाद मुझे देखने आ सके। तो वक्त तो मुश्किल था, लेकिन अब जब मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि शायद ईश्वर ने कुछ ऐसा ही डिज़ाइन किया था। किसी चीज़ को से डिप्रेस ना होकर, अपनी हिम्मत रखकर हम उसमें अपना होश और अपना जोश बरकरार रखें तो एक अचीवर के रूप में निकल कर आ सकते हैं।
दीपा, आपके बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें हैं, उनमें से एक ये है कि आपने सिर्फ शॉट पुट नहीं खेला है बल्कि मोटर स्पोर्ट्स से लेकर तैराकी और जैवलिन थ्रो भी आप करती रही हैं, ये आपके जज्बे को दर्शाता है।
वो मैंने हाईएस्ट मोटरेबल रोड्स पे जाके एक खिताब बनाया था, मैंने गाड़ी चलाई थी मोटर स्पोर्ट्स में। रेड द हिमालय में भी मैंने रैली में पार्टिसिपेट किया था जो इतिहास बना अपने आप में, क्योंकि दुनिया की हाईएस्ट मोटरेबल रोड पर होती है और आज तक किसी भी अपंग महिला या आदमी ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। मेरा रैली लाइसेंस बनना अपने आप में एक इतिहास था। आई थिंक ये सारे काम जो मैं करती हूँ, यमुना नदी पार कर जाना या गाड़ी चलाना या मोटरसाइकिल चलाना, वो सारे जो काम है उनका एम यही रहता है एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी का। ये नहीं फर्क पड़ता कि आप किस हाल में हैं, फर्क ये पड़ता है कि आप क्या चॉइस करते हैं अपनी जिंदगी में, क्या करना चाहते हैं, वो ज्यादा मैटर करता है।
तो ये थी शॉटपुट थ्रोअर दीपा मलिक, जिन्हें आप सुन रहे थे बीबीसी न्यूज मेकर्स पर।
दीपा मलिक को पैरालंपिक 2016 जो रियो में चला में शॉटपुट स्पर्धा में सिल्वर मेडल मिला था। दीपा मलिक से बात की थी हमारी साथी राखी शर्मा ने। और कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं एक बार फिर से विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार। विवादित संगठन सलवाजुडुम से जुड़े हुए नेताओं ने अब एक बार फिर अग्नि नामक संगठन बनाकर फिर से माओवादियों के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया है। पुलिस और इस संगठन अग्नि के नेताओं ने कल जगदलपुर में एक रैली भी आयोजित की। अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने माना है कि उनके जहाजों ने उत्तर पूर्वी सीरिया में हमले किए हैं जिसमें 62 सीरियाई सैनिकों की मौत हो गई है। रूस ने इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रांस एटलांटिक व्यापार समझौते के खिलाफ जर्मनी के कई शहरों में हजारों लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। स्लोवाकिया ने कहा है कि अगर ब्रिटेन अपने यहां काम कर रहे यूरोपीय संघ के नागरिकों के अधिकारों की गारंटी नहीं देता है तो स्लोवाकिया यूरोपीय संघ छोड़ने पर ब्रिटेन को दिए जाने वाले किसी भी सौदे पर वीटो करेगा। बेल्जियम में पहली बार एक बच्चे को इच्छा मृत्यु की इजाजत दी गई है। नया कानून बनने के बाद विशेष परिस्थितियों में किसी को अपनी मृत्यु चुनने का अधिकार मिल गया है। इसी के तहत एक गंभीर रूप से बीमार बच्चे को मृत्यु चुनने में मदद की गई। बीबीसी समाचार।
स्टूडियो संभाला था देवाशीष कुमार ने। मुझे और पूरी टीम को दें इजाज़त। एक घंटे के बाद फिर से विश्व भारती में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।